मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, इस विषय पर अपने कुछ थॉट्स शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले जो एक दो दूसरी खबरें हैं, आइए उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा और शायद स्पेस एक्स का भी नाम सुना हो। स्पेस एक्स स्पेस अंतरिक्ष से संबंधित एक कंपनी है और एलन मस्क इसके मालिक हैं। एक और संदर्भ है जिसकी वजह से आप एलन मस्क को जानते होंगे और अभी अभी का ही संदर्भ है, और उस संदर्भ है कि एलन मस्क ने अंततः ट्विटर को खरीद लिया है। ट्विटर हालांकि लंबे समय तक विवाद रहा, वो बीच में सौदेबाजी करने के बाद उन्होंने मना भी कर दिया, लेकिन फिर अब उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया है और उसके मालिक बन गए हैं। और इसके बाद से आप अखबारों में लगातार वो जो निर्णय ले रहे हैं उस आधार को आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलते होंगे। एलन मस्क, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क, धनी नहीं तो धनी में से एक कह लीजिए। इन्होंने अभी तक विश्व का जो सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट हो सकता है वह लॉन्च किया है। उस रॉकेट का नाम है फाल्कन हैवी, याद रखिएगा नाम, फाल्कन हैवी। ये जो रॉकेट है ये अमरीकी स्पेस फोर्स के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इस रॉकेट से भेजे जाएंगे अमरीकी स्पेस फोर्स के उपग्रह, राइट। और ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर से जो नासा में है, और ये जो नासा है ये फ्लोरिडा स्टेट में, अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट में है। हम लोगों को यहां जाने का मौका मिला है, इसलिए मैंने थोड़े से विस्तार से इसके बारे में कुछ बातें आपसे कर ली हैं। दोस्तों, आप महसूस कर रहे होंगे कि अब जो इस तरह की छोटी छोटी खबरें होती हैं उन्हें बताने का बोलने का अंदाज मैंने थोड़ा बदला है, और जानबूझकर मैं ऐसा कर रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि अभी जो हमारे 15 दिन की क्लासेस चल रही थी ऑफलाइन क्लासेस, इसमें मैंने देखा कि बहुत से स्टूडेंट ने मुझे अपनी कॉपियां दिखाई, रजिस्टर दिखाए, अपनी डायरी दिखाई, जिसमें डेली ऑडियो लेक्चर की घटनाओं को वो बहुत ही डिटेल में नोट करते जाते थे। जो मैं बोलता जाता था उन्हें वो नोट करते जाते थे। बाद में मुझे उनसे पूछना पड़ा कि भाई इतनी सारी घटनाएं तुमने ये नोट कर रखी हैं तो इनके रिवाइज कैसे करोगे, तुम्हारे किस काम की हैं, सारे नोट नहीं करने हैं। जो बहुत ही मैं महत्वपूर्ण पॉइंट कहता हूं चाहो तो उन्हें नोट कर लो, या जो अपनी तरफ से लगे उन्हें नोट कर लो। अगर सारी बातें नोट कर ली गई तो कुछ दिनों के बाद वो अर्थहीन हो जाएंगी। उससे मेरे मन में एक विचार आया कि नहीं, मुझे अब अपनी बात थोड़े अलग अंदाज में आप सबके सामने रखनी चाहिए, ताकि सुनने के दौरान ही वो आपके माइंड में अंडरलाइन होती जाए, फिर आपको नोट करने की जरूरत नहीं होगी। और विश्वास रखिए, अपने ऊपर इतना तो आपको भरोसा होना चाहिए कि अगर एग्जामिनेशन में इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्पेशली प्री एग्जामिनेशन में, तो आप उसका उत्तर दे देंगे। अदरवाइज कितना नोट करेंगे आप बताइए। इसीलिए मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है। दोस्तों, इस बीच में कुछ चुनाव हुए हैं और जिस तरह से प्री एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे ब्राजील और इसराइल में जो भी चुनाव हुए हैं उनके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। इसराइल में चुनाव हुए और मजेदार बात यह है कि 4 साल में 5वीं बार चुनाव हुए। 4 साल में 5वीं बार, बहुत छोटा सा देश है, 1 करोड़ से भी कम आबादी है, और इसराइल फिलिस्तीन इन सबके बारे में आप लगातार पढ़ते ही रहते हैं। यहूदी राष्ट्र है, आप यूं कह लीजिए कि एक तरह से कट्टर यहूदी राष्ट्र है। यहां जो चुनाव हुए हैं उसमें लिक्विड पार्टी ने जीत हासिल की है, और इसके लीडर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और ये फिर से इसराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगर आपको ध्यान हो, अगर थोड़े से भी लंबे समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो लगभग 3-4 साल पहले बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने काफी भारत के कई हिस्सों में वो शायद गए भी थे, बेंजामिन नेतन्याहू। अब आप देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो जीत हुई है वो किस मायने में इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा हम समझेंगे आगे चल करके। इसी तरह से एक और चुनाव हुआ ब्राजील का। ब्राजील में जो चुनाव हुए उसमें एक अलग तरह की बात देखने में आई, और वो ये कि वहां जो जीत मिली है वो है लूसा द सिल्वा को, लूसा द सिल्वा, ये भी एक लंबे अरसे के बाद फिर से सत्ता में लौटे हैं, लूसा द सिल्वा। ये अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अब मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। अलग अलग विचारधारा कहने से मेरा क्या मतलब है, चीन में आपने देखा कि चीन में अब जो राष्ट्रपति हैं वो लंबे समय तक ही बने रहेंगे, उन्हें कोई दखल नहीं दे सकेगा, जिसके लिए आप अनुदार वामपंथ कह सकते हैं। वामपंथ मतलब एक प्रोग्रेसिव पार्टी होती है, शुरू में इसे प्रोग्रेसिव पार्टी कहा जाता है, उस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अनुदार मतलब वो उतना लिबरल नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप के करीब पहुंच गई है, जो राजनीतिक दल भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी ही क्यों ना, तो हम कहते हैं अनुदार वामपंथ। तो चीन में हमने उसकी दबंगी देखी, इसके बाद देखिए ब्राजील में जो अब लूला द सिल्वा जीत कर आए हैं, वो बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि समाजवादी वाम विचारधारा की पार्टी है, मतलब चीन जैसी कम्युनिस्ट विचारधारा को तो लेकर के नहीं चलती है, लेकिन फिर भी समाजवाद और साम्यवाद का जो एक मिला जुला रूप होता है, एक सॉफ्ट फॉर्म होता है, जो हम भारत में भी देखते हैं खासकर, तो उस तरह की विचारधारा वाली पार्टी है, यानी कि अनुदार वामपंथ नहीं बल्कि थोड़ी सी सॉफ्ट। इसके बाद फिर हम इसराइल में देखते हैं, तो इसराइल में नेतन्याहू की वापसी को एक प्रकार से दक्षिण पंथ की वापसी माना जा रहा है। दक्षिण पंथ क्या होती है, किसे कहते हैं, आप सब मेरे समझ से जानते होंगे, जो एक प्रकार से आप कह लीजिए कि उग्र राष्ट्रवाद को पनाह देती है, संस्कृति परंपराओं इन सब पर बहुत ज्यादा जोर देती, हमारी भाषा हमारी जाति हमारा धर्म इन सब को थोड़ा सा ज्यादा महत्व देने वाली जो विचारधारा है उसे हम कहते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा। इसराइल में उसकी जीत हुई है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि इटली में चुनाव हुए थे, वहां दक्षिणपंथी विचारधारा की जीत हुई। इसी के साथ ही साथ स्वीडन डेनमार्क वगैरह में इस बीच में जो चुनाव हुए हैं वहां भी लगभग दक्षिणपंथी विचारधारा की जीत देखने को मिलती है। तो इस तरीके से देखिए कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग तरह की विचारधाराएं उत्पन्न होती हुई पनपती हुई दिखाई देंगी, कहीं पनप जाती हैं तो फिर डूब जाती हैं, फिर उसकी जगह पर दूसरी विचारधारा आ जाती है। तो इन सबसे निष्कर्ष क्या निकलता है, कल हिंदुस्तान का जो मैंने आपको एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था विचारधारा और जनमत, वो इसी दृष्टि से मैंने आप सबको उपलब्ध कराया था। इससे निष्कर्ष बहुत सीधा सा ये निकलता है कि अब जो लोग हैं किसी भी राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो केवल यह है कि हमारा जीवन कितना बेहतर हो सकता है, बस जनता को इसी से मतलब है, हम कितने सुरक्षित हैं, हम कितना अच्छा जीवन जी सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कैसे थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, बस अब उनको इसी बात से लेना देना है। शायद वैचारिक निष्ठा से वो उतने गहरे रूप से जुड़े हुए नहीं है, इसीलिए इसी एडिटोरियल कमेंट में यह सजेशन दिया गया कि अब राजनीतिक दलों को केवल इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनके हार और जीत का जो पैमाना हो सकता है, जो कसौटी हो सकती है, वह केवल जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना, यानी कि कैसे आप जनता की अधिक से अधिक सेवा करने के लायक अपने आप को बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र। इस विषय को चुनने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो आपने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें एक लंबे अरसे के बाद, शायद 22 साल के अरसे के बाद, गैप के बाद पार्टी के चुनाव हुए, जिसमें खड़गे जी चुनाव जीत कर आए। इसका मतलब यह हुआ कि एक राजनीतिक दल में 22 साल के बाद चुनाव हुए, यानी कि 22 साल तक कोई एक व्यक्ति विशेष ही एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष बना रहा। इसके बाद एक और भी दूसरी घटना इस बीच में घटित हुई है जिसकी अखबारों में बहुत कम चर्चा हुई है, और वो घटना यह है कि आंध्र प्रदेश में जो अभी सत्तासीन राजनीतिक दल है, वहां उस राजनीतिक दल ने खासकर जगमोहन रेड्डी जी को अपना आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया था। आजीवन अध्यक्ष यानी कि जब तक ये रहेंगे तब तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे, ठीक है। दोनों में आपको एक बात दिखाई दे रही है कि चाहे तो आप किसी को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त कर दें घोषित रूप से, या फिर लंबे समय तक चुनाव न करें तो एक ही व्यक्ति अध्यक्ष बना रहे। तो यहां आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि राजनीतिक दल आंतरिक रूप से अपने चुनाव की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत स्पष्ट रूप से है, जो हमारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वहां भी लगभग लगभग इसी तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। इस पर हम लोगों ने इससे पहले कई बार बातें की हैं, मैं उन्हें आपके सामने अभी रखने नहीं जा रहा हूं, वक्त कम है, तो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपके सामने मैं रखूंगा। तो दोस्तों, अब ये क्या स्थिति है, भारत में लोकतंत्र है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, जनता मतदान करती है और उसके आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और यहां तक कि हमारी जो लोकल बॉडीज है वहां भी चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव को अंजाम देने का काम राजनीतिक दल करते हैं और पता लग रहा है कि उन राजनीतिक दलों के ही चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो यहां आपको एक प्रकार का मिसमैच दिखाई देगा। तो क्या इसके लिए कोई प्रोविजन किया गया है या हमारे पास कोई एक्ट है कि जो राजनीतिक दल हैं वे आंतरिक चुनाव कराएं? खासकर इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, वह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी कोशिश ये रहती है कि एक हमारे पास जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 है, ये आपके सिलेबस में भी है, अलग से मेंशन किया हुआ है, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। इसकी एक धारा है 29A, आपको याद होनी चाहिए धारा 29A। तो इसके तहत जो चुनाव आयोग है वो पार्टियों के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी करती है, पार्टियों के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी करती है, साथ ही वह इन राजनीतिक दलों को हर 5 साल में आंतरिक चुनाव कराने और नेतृत्व परिवर्तन की याद दिलाती है कि भाई आप आंतरिक चुनाव कराइए। अब वो राजनीतिक दल कराते हैं या नहीं कराते हैं ये उनकी मर्जी पर है। तो अब इसमें चुनाव आयोग क्या कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वो उन्हें मजबूर कर सके कि आपको चुनाव कराने होंगे, अगर आप चुनाव नहीं कराते हैं तो आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि चुनाव आयोग इस मामले में अधिकार विहीन है, और सीधी सी बात है कि ऐसी स्थिति में जो हमारे राजनीतिक दल हैं अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करते हैं और चुनाव नहीं कराते। तो दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो आपके ध्यान में लाना मेरा केवल इस मुख्य विषय का उद्देश्य था। मैं बहुत ज्यादा इस पर विस्तार से बात करने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस पर अभी काफी आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं और हम लोगों ने इस पर बातें भी की हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक दोस्त का नाम है प्रेम नारायण कुशवाहा, आपका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की मुझे इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।